होली की रात का जागरण, जप, ध्यान पुण्य का ढेर ढेर पैदा करता है। महान तपस्या, महान पुण्य, महान फल देने वाली। प्रहलाद तो एक दिन होलिका के गोद में रहा, आप तो 365 दिन होलिका के गोद में ही तो हो। आपको इस होली के उत्सव से ये जरूर जानना चाहिए कि भक्तराज प्रहलाद नारद जी के आश्रम में माँ के गर्भ में थे, और माँ तो पति का क्या होगा, हमारा क्या होगा, ससुराल वालों का क्या होगा, उसकी बुद्धि बटी हुई थी। जिसकी बुद्धि बट जाती है वो परमात्मा में स्थिति करने में बहुत समय लगता है उसका, और जो एकांत में चला जाता और एक तरफ बुद्धि लगा देता उसके लिए परमात्मा अपने घर का आत्मा हो जाता और साक्षात्कार हो जाता। दैत्यराज प्रहलाद माँ के गर्भ में नारद जी के सत्संग सुनते थे, और नारद जी के संकल्प का प्रभाव और प्रहलाद के संकल्प का प्रभाव, कयादु के संकल्प का ऐसा प्रभाव कि गर्भ को चाहे वर्षों बीत जाए लेकिन उसका शरीर इतना ना बढ़े कि मुझे पीड़ा हो। तो प्रहलाद का शरीर नहीं बढ़ा, बुद्धि बढ़ती चली गई। कई वर्षों तक गर्भ में रहे, शरीर उतना ही सुकोमल बालक का, लेकिन बुद्धि बुजरगों जैसी होती गई। वह प्रहलाद भक्ति के वचन सुनकर ज्ञान के सर्वत्र परमात्मा है, ये रंगों का उत्सव है, ये होली को उत्सव, होली जो हो गया वो हो गया, वैर भाव को भूल जाओ। और वैरी कितना भी वैर रखे, कितना भी कष्ट दे, फिर भी प्रहलाद के जीवन में उस पिता के लिए भी गांठ नहीं है। प्रहलाद जिसका प्रहलाद ठीक तरीके से सूझ समझ आत्मा की आनंद आह्लादित है। प्रहलाद की ये विशेषता थी कि कितने भी प्रिय पदार्थ की प्रशंसा सुनकर उसके चित्त में आकर्षण नहीं होता था, और कितनी भी ग्लानि और घृणा और निंदा की किसी की बात सुनकर प्रहलाद के चित्त में उसके लिए नफरत नहीं होती थी। मैं किसी के लिए नफरत और किसी के लिए आकर्षण करके अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को, जो हृदयेश्वर का घर है उसको बिगाड़ने का पाप क्यों करूं? मेरा हृदय तो हृदयेश्वर को प्रकट करने के लिए है। प्रहलाद की मति का आप हम अनुसरण करें। नो दिग्निश्चितो हो व्यसनेषु हो निष्प्रहो श्रुतेषु दृष्टुषु हो गुणेषु सद्वृत्ति हे दान्ते इंद्रियः प्राण शरीरादि सदा प्रशांतः कामो रहितासु असुराः। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक घबराते नहीं थे, और लोक परलोक के विषयों की प्रशंसा, अप्सराओं के और गंधर्वों के गीत और यक्ष और किन्नरों के लीलाओं और आकर्षणों से वे कभी प्रभावित नहीं होते थे। वे जानते थे कि यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं और सौंदर्य जिस परमेश्वर से आता है, दिखता और विलय होता है, वे परमेश्वर मेरे आत्मा होकर बैठे हैं। मैं उसका अनादर करके स्वर्ग की वासना क्यों करूँगा, गंधर्वों के गीत की वासना क्यों करूंगा? मुझे तो वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रभु का पाठ सुना दे कोई, मुझे भोग विकारों में जाना नहीं, मुझे हरि का रस पिला दे कोई। देव सभा में सद्गुण संपन्न सर्वोपरि कौन है? ऐसा प्रश्न होते ही देवता लोग बोलते कि प्रहलाद भले हमारे विरोधी कुल का बालक है लेकिन प्रहलाद सर्वगुण संपन्न है। एक दिन प्रहलाद को बच्चों ने घेर लिया कि प्रहलाद तुम अकेले बैठे रहते हो, तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजगैबी प्रभाव है, और हमारे सारे के सारे क्लास में तुम्हारी आभा और तुम्हारी योग्यता का बड़ा प्रभाव है, क्या कारण? प्रहलाद ने कहा चलो भैया मैं एक कारण बताता हूँ। ले गए, बोले मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और वो भी है क्षण भंगुर। मान लो आज के आदमी का 80 साल का जीवन अपने जमाने का, 80 साल में 20 साल तो बाल्यकाल और किशोर काल में बीत गए, बाकी रहे 60। 60 में भी आधा तो कर दो काट, रात्रियां सोए, बाकी रहे 30 साल जयराम जी की। 30 में भी बुढ़ापे की बीमारियां और बीती हुई बातें तंग करती है, और जवानी के विकार तो अल्प आयु है। इस अल्प आयु में किससे वैर लेना, किस भोग में अपने को धकेलना, वैर और भोग से बचकर परमात्मा के चिंतन और योग में लगना ही जीवन का सार है भाइयों, ये मैंने सुना है। मुझ पर गुरु की कृपा है। तब दैत्य बालकों ने कहा कि गुरु तो आपके शंड अमरख और हमारे भी, मेरी मति तो सत्य के उपदेश में, मुक्ति के उपदेश में लगी है, उससे ही मेरी मति तृप्ति का अनुभव करती है। जो राग के समय द्वेष के समय चलने से मेरे को अचल कर दे, भोग रस से मेरे को योग रस में टिका दे, ऐसी सतगुरु के ज्ञान की मति के आश्रय से मैं निश्चिंत हूँ, निर्भिक हूँ, निर्द्वंद हूँ और निरामय हूँ। यद्दिश्चेह सर्वभूतानाम प्रिय आत्म ईश्वर सुहृद, भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, प्रियतम है, आत्मा है। प्रहलाद, इतना बढ़िया ज्ञान तो तुमसे हम सुनते हैं, तुम आए उसके पहले हम गुरु जी के पास हैं, तो तुम्हारे कौन से गुरु हैं? तुम तो नन्हे बालक महल छोड़कर कहीं गए नहीं। कयादु जब नारद के आश्रम से अपने महल में आई वर्षों के बाद, फिर संकल्प किया और प्रसूति हुई, इच्छा प्रसूति। लेकिन पहले तो वरदान से इच्छा प्रसूति, जाओ एक साल में नहीं होगा, चलो मेरे को 6 साल में प्रसूति। व्यास जी की पत्नी ने 12 साल में शुकदेव को जन्म दिया। तो आपके अंतर आत्मा में, मन में कितनी शक्ति है, आपका मन जैसा सोचता है शरीर पर उसकी सीधी असर ऐसी पड़ती है। ये रंगों की होली आपके जीवन में, इस रंगों का बड़ा महत्व है, पलाश के फूलों का, पलाश के पेड़ का, पलाश के पत्तों का बड़ा भारी महत्व है। पलाश के पत्तों में दोनों और पत्तल में भोजन करने से, चांदी के बर्तन में भोजन करने का जो लाभ होता है वो लाभ होता है। पलाश के बीजों से बहुत सारे रोग मिटते हैं। पलाश के फूलों में कफ और वायु नाश करने की योग्यता है, और पसारे के यहाँ मिलता है, उससे वैद्यों की सलाह के अनुसार घर गत्थू में बहुत सारे इलाज होते हैं। तो पलाश के पुष्पों से आप लोग होली खेलना। रंग विज्ञान ये कहता है कि आपके शरीर में भी 7 रंगों का प्रभाव है। मूलाधार केंद्र में लाल रंग का प्रभाव है, स्वादिष्ठान केंद्र में मूलाधार से नाभि से थोड़ा सा नीचे और उससे भी ज़्यादा नीचे मूलाधार है, मूलाधार के ऊपर है स्वादिष्ठान और स्वादिष्ठान के ऊपर है नाभि के पास में मणिपुर केंद्र। तो मणिपुर केंद्र का नीला रंग है, अनाहत केंद्र हृदय का आरुणी रंग है, और कंठकूप में विशुद्धाख्या है धूम्र रंग है, और आज्ञा चक्र में प्रकाश रंग का प्रभाव होता है। चंद्रमा भी श्वेत है, ऐसे ही मंगल का ग्रह का प्रभाव लाल है, बुध का हरा है, बृहस्पति का पीला है, शुक्र ग्रह का नीला और श्वेत वर्ण का रंग है, शनि का नीला है। इन रंगों के प्रभाव से भी ग्रहों का, ग्रहों के, नक्षत्रों के और आपके के केंद्रों के बीच सूक्ष्म संबंध है। अब सूर्य के किरण सीधे पड़ेंगे तो आपके सप्त रंग और सप्त धातु थोड़े कंपायमान होंगे, तो आपके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत रहे, इसलिए अन्य रंगों को संतुलित रखने के लिए पलाश के पुष्पों से होली खेलने की व्यवस्था थी। दुर्भाग्यवश केमिकलों से जब होली खेलते हैं तो अभी के विज्ञान बताते कि उसमें फलाने फलाने हार्मफुल पदार्थ पड़ते और यहाँ तक कि रोम कूपों के द्वारा तुम्हारे सप्त रंगों को उत्तेजित कर देते हैं और आँखों में अगर उन रंगों का प्रभाव ज़्यादा पड़े तो नज़र पर भी बुरा असर हो सकता है। आप स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहें तो पलाश के फूलों से होली खेलिए, अपने रोम कूपों को स्वस्थ कर देना, बाकी केमिकलों के रंग से बचना। इन दिनों में कीर्तन यात्रा निकालना हितकारी है, कूदना फादना हास्य विनोद, लेकिन गौरांग चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी होली के दिवस हुआ था तो आप गौरांग की स्मृति में कीर्तन यात्रा करें, हरि बोल करते हुए कूदे फादे, लेकिन जूते न पहने, न दूसरे के गले में पहनावे, न अपना मुंह बंदर जैसा बनने दे, न दूसरे का बनाए, न आप उछलंकता की होली खेले बहू बेटियों को शर्म में डालने वाली, न उनको दूसरों को खेलने के लिए मौका दें। मुझे उम्मीद है कि मेरे सत्संगी तो ये गलती नहीं करते, लेकिन अपनी बचाव के साथ साथ अड़ोस पड़ोस में भी इस बात का तुम थोड़ा प्रचार कर देना। तुम्हारे सप्त रंग, सप्त धातु और सप्त ग्रहों का तालबद्धता बना रहे। आपको अगर कमरे में रंग करना हो तो कमरे का रंग अगर पीला होगा तो पीला रंग, अगर पीले रंग से केसुड़े के रंग से आप होली खेलते हैं तो क्षमा का गुण बढ़ेगा, गंभीरता का गुण बढ़ेगा, उत्पादन शक्ति का सामर्थ्य बढ़ेगा, स्थिरता बढ़ेगी, वैभव और मजबूती और सजिंदगी का आपका स्वभाव बढ़ेगा, क्षमा और स्थिरता के सद्गुण बढ़ेंगे, हृदय संस्थान और मस्तिष्क के दुर्बल विचार दूर होंगे, उदासी और उन्माद दूर होगा। अगर आप केमिकलों से खेलते हैं तो ये सारे फायदों से वंचित विपरीत नुकसान होने की संभावना है, और विदेश में जब ऐसे सत्संग नहीं मिलते और लोग ऐसे वैसे लाल रंगों के उत्तेजक कपड़े पहनते या उत्तेजक दृश्य देखते हैं तो वे बेचारे हिंदुस्तान से ज़्यादा बीमार, ज़्यादा असहिष्णु और ज़्यादा आत्महत्याएँ करके दुख के भागी बनते हैं। हम तो चाहते हैं कि वे भी बेचारे सुख के भागी बने और आप भी सुख स्वरूप प्रहलाद की नाई अपने जीवन में विघ्न बाधाओं से भी अप्रभावित रहकर आनंद और माधुर्य में चमकते रहें। तो प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद गुरुजी तो तुम्हारे हमारे फिर तुम ये इतना सारा ये अर्थ धर्म काम इनको तुच्छ समझते हो, दुखदायी समझते हो, अतृप्ति वाले हैं और मोक्ष ही सुखदायी है, तो ऐसा ज्ञान हमको नहीं मिला। तो प्रहलाद ने कहा कि मैं जब माँ के गर्भ में था तो ऐसे ऐसे देव ऋषि नारद जी के उपदेश मुझे मिले। माँ की चेतना तो बुद्धि तो बिखरी हुई थी कि पिता कब आएंगे, घर क्या होगा, ये होगा, लेकिन मेरी बुद्धि तो महापुरुष के सत्संग में बार बार रम जाती थी। गर्भ में पड़े पड़े और काम भी कहाँ, बुद्धि को दौड़ाना कहाँ, तो बुद्धि में वो परब्रह्म परमात्मा की निष्ठा प्रतिष्ठित हो गई। इसलिए इतनी मुसीबतें और इतने विघ्न होने पर भी मेरी मति भगवान की सत्ता, भगवान का माधुर्य, भगवान का अस्तित्व और भगवान ही सर्वत्र और सर्वोपरि देव है, ऐसी मति मेरी दृढ़ हो गई गुरु के उपदेश से। तो कौन गुरु थे तुम्हारे, बोले ये हमारे गुरु थे देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद ने कयादु को उपदेश सुनाया और प्रह्लाद ने उपदेश झीला, और फिर हिरण्यकश्यपु प्रह्लाद की इस दृढ़ता पर बौखला गए। हिरण्यकश्यप ने तो इतना उपद्रव मचा दिया था, शक्ति संपन्न होकर आया था, दैत्यों का इतना प्रभाव बढ़ गया था कि देवपुरी में भी उसने अपना धावा बोल दिया था। आप त्रिलोकी का स्वामी अगर कोई है विश्व में, अगर कोई है पूजने योग्य मानने योग्य, तो हा 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 भगवान हिरण्यकश्यप। और उस भगवान के घर, देह को भगवान मानने वाले के घर, कैसी भगवान की व्यवस्था कि प्रहलाद जैसा भक्त आ जाता है बालक। हिरण कश्यप अर्थात जिसको संपदा और ऐहिक भोग के सिवा कुछ भी सार और सत्य न सूझे, देह और भोग ही सत्य देखे, वो हिरण्यकश्यप। और देह और भोग मिथ्या है और उसको निहारने जानने वाला परमात्मा सत्य है, वो जिसको देखे उसका नाम है प्रह्लाद। अर्थात आत्मा की सत्यता समझने वाला प्रह्लाद, संसार और देह को सत्य मानने वाला प्रह्लाद का पिता हिरण्यकश्यप, इन दोनों के विचारों में वैमनस्य आ गया। वैमनस्य आ गया, लेकिन प्रह्लाद उनके लिए अपने चित्त को उद्विग्न नहीं करते, लेकिन वो प्रह्लाद को किसी भी प्रकार से अपने सिद्धांत में घसीटना चाहता। मेरुरे डगे पण मनड़ा ना डगे, इस सिद्धांत से प्रह्लाद अडिग रहे। आखिरकार होली का हिरण्यकश्यप की बहन को वरदान मिला हुआ था कि अग्नि तुझे नहीं जलाएगी। ये डांट फटकार से नहीं मानता, इतनी पीड़ा देने पर भी पीड़ित नहीं होता, क्या इसके पास जादू है? तो अब इसको तू गोद में लेकर बैठ लकड़ियों के बीच और लकड़ियां जलाई जाए, ये जलकर खाक हो जाएगा और तू तो ज्यों की त्यों रहेगी। होलिका ने ये बात स्वीकार कर ली, प्रह्लाद की बुआ ने, हिरण्यकश्यप की बहन ने। तो लकड़ियों के ढेर इकट्ठे करके उसे बिठाया गया और चारों तरफ आग लगा दी गई। अब प्रह्लाद ने तो अग्नि में भी दाहक शक्ति, परमात्मा तुम्हारी और मैं तो तुम्हारी शरण, जल में आप्यानी शक्ति है, अग्नि में दाहिनी शक्ति है, दाहक शक्ति तुम्हारी है, तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम सर्वस्व हो, गर्भ में भी तुमने रक्षा की और सर्वत्र तुमने मेरी रक्षा की। और प्रह्लाद कोई साधारण बच्चा नहीं था, सनत कुमार सनकादि ऋषियों में एक ऋषि थे जयराम जी की, तो ज्ञान तो पहले ही थे, गर्भ में थोड़ा प्रतिबंध था, तो नाराज जी ने प्रतिबंध हटा दिया। वैसे तो नाराज जी ने उनसे कभी उपदेश लिया, लेकिन देखा कि ऐसे भक्तराज कयादु के यहाँ भेज दिए गए हैं, तब कयादु के गर्भ में हमारे गुरुदेव को गर्भ का प्रतिबंध न लगे, इसलिए वो आ गए। देव ऋषि ले जा रहे हैं तो चलो छुड़ा कर अपने गुरुदेव को माँ के गर्भ में फंसा देखकर नारद जी ने वहाँ उपदेश चालू कर दिया, तात्विक प्रतिबंध हट गया। अब वो ब्रह्मवेता सनकादि ऋषियों का संकल्प के आगे अग्नि क्या काम करेगी? आग जली खूब भभुक भभुक और होलका को वरदान मिला था न जलने का, वो तो जल के खाक हो गई, लेकिन प्रह्लाद हेम खेम रह गए, उसकी स्मृति में भी होलिका का उत्सव विशेष रसीला हो गया। हम छोटे थे तो हमारी माँ ने हमें दिखाया था, भाखरी मीठी भाखरी बनाई वेली और उस पर कच्चा धागा सूत का एकदम पतला लपेटा, दो चार चक्कर दोनों बाजू, मतलब करीब करीब सात आठ चक्कर सीधे लगे होंगे, सात आठ चक्कर आड़े लगे होंगे। वो हम बच्चे थे, हमारे सामने ही होली का जलाते समय वह डाल दी भाखरी, सिंधी में जाने लोलो रोट रोटा डाल दिया। और हमने देखा बचपन में कि लकड़ियां जल गई और वो भाखरी सिक गई, लेकिन धागा सफेद का सफेद, कच्चा धागा ज्यों का त्यों। बोले भक्ति का एक पतला सा धागा है और अडिग विश्वास है तो प्रह्लाद की नाई भगवान की ये अग्नि देवता भी उस भक्त की सहायता करती है। ये भक्तों को मानो एक प्रोत्साहन देने के लिए भी, होली का उत्सव से प्रेरणा लेने के लिए भी एक प्रसन्न हो सकता है। एक संत ने गाया कि होली खेले गुरु जी का प्यारा कोई विरला समझन हारा रे। होलिका के गोद में ऐसे रहे कि संसार का ताप उन्हें अग्नि तपा नहीं सके। आप भी ऐसी होली खेलो कि संसार के राग द्वेष भय शोक ये वैर ज्वेर के बीच ही तो आप रहते। प्रहलाद तो एक दिन होलिका के गोद में रहा, आप तो 365 दिन होलिका के गोद में ही तो हो, लेकिन प्रहलाद की नाई भक्ति का धागा बना रहे ताकि संसार रूपी होली आपके दिल को तपाए नहीं जलाए नहीं। इस उत्सव का ये भी संकेत समझ लेना चाहिए। होली खेले रे गुरु जी का प्यारा ज्ञान गुलाल उड़े अठ पहरी रत सदा मतवारा। होली खेले रे गुरु जी का प्यारा सुख आ जाए तो ज्ञान की निगाह से देखो कब तक, दुख आ जाए तो ज्ञान की निगाह से देखो। किसी चीज की कश्मीर की फलानी जगह की फलानी जगह की फलाने पिकनिक प्लेस की वाह वाही हो जाए बोले क्या है उधर भटकेंगे अपना सुख वहां लेने को जाए, इतने हम मूर्ख नहीं। इस प्रकार आप ज्ञान के रंग से अपने चित्त को रंगे रखने में तत्पर रहे। होली खेले गुरु जी का प्यारा ज्ञान गुलाल उड़े अठ पहरी रत सदा मतवारा। आवागमन की संशय मिट आए पाप कपट से न्यारा। जरा जरा बात में झूठ कपट अब नहीं करेंगे, सत्य समान तप नहीं। कुदरत खेले में खेले होरी ले सतगुरु का सहारा। कुदरत खेल में खेले होरी कुदरती खेल में जो खेल रहा है ऐसा सतगुरु का सहारा लेकर संत मिले भेद जद पावे अचरज खेल अपारा। संत मिल जाए तो भेद पाले कि ये संसार एक खिलवाड़ है, अचरज है कि जो मिथ्या है वो सच्चा होकर दिख रहा है। जो बदलने वाला है उसे प्रभावित क्यों होना, जो मिटने वाला है उसे टेंशन क्यों लेना। समय की धारा में बहता जा रहा है दुख चिंता ये वो। देखत फाग मेरे मन भाया मिट गया तिमिर अंधियारा। अधर तख्त पर आप बिराजे होत नाद झनकारा रे। होली खेले गुरु जी का प्यारा ज्ञान गुलाल उड़े अठ पहरी रात सदा मतवारा। करोड़ों भानु भवन की शोभा बाजे अनद नगारा। ऐसी खेले जन कोई होरी जन्म मरण का छुटकारा। होली खेले कोई गुरु जी का प्यारा ज्ञान का प्रकाश पावन हारा। जीव दास कहे कर जोरी हैरो सतगुरु मेरा प्यारा। होली खेले गुरु जी का प्यारा प्रहलाद गुरु जी के प्यारे। ऐसे ही भगवान के भक्त भगवत रस के प्यारे। प्रहलाद से दैत्य पुत्र पूछते कि प्रहलाद तुम ऐसे आनंदित और निर्भीक हो तो तुमको ये नहीं होता कि क्या होगा। बोले बालको जो भगवान हमारे जन्म के पहले हमारे साथ थे अभी हैं बाद में रहेंगे वही सत्य है वही सार है। संसार का कोई भी सुख या दुख सत्य और सार नहीं है। जब वो सत्य नहीं है सार नहीं है बदलने वाला है तो उससे प्रभावित क्यों होना और उससे भयभीत भी क्यों होना। सब गुजरता जाएगा पिता की डांट या किसी का प्रहार कब तक। ईश्वर जब तक शरीर रखना चाहेंगे तो कौन मार सकता है और जब ईश्वर शरीर की यात्रा पूरी करेंगे तो कौन माई का लाल जी सकता है। प्रहलाद हमें तुम्हारे जैसा आनंद तुम्हारे जैसी निर्भीकता कैसे प्राप्त हो। बोले भगवान को पाना कठिन नहीं है बाल्यकाल में चित्त शुद्ध होता है, जैसे श्वेत रंग को श्वेत कपड़े को रंग सहज में लग जाता है, ऐसे निर्मल हृदय को हम भ्रूण थे, बालक थे, माँ के गर्भ में भ्रूण अवस्था में थे और गुरु जी का रंग लग गया और आपको भी देव ऋषि नारद के जो उपदेश मेरे को स्मरण है वो सुनाता हूँ, तुम भी मनन करो तो तुम्हारा दिल भी रंग जाएगा, तुम भी ध्यानस्थ हो जाओ। भगवान मेरे आत्मा है, भगवान मेरे पालक पिता हैं, रक्षक हैं, पोषक हैं। शरीर का पालन मेरे दैत्य पिता ने माता ने किया होगा शरीर का, लेकिन पालक सचमुच में वो मेरे परमात्मा है जो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं और सबके आत्मा रूप में है, सबके कर्म के फलदाता हैं, कर्म के प्रेरक हैं, कर्म के नियामक हैं। वही हमारे सर्वेश्वर प्रभु अपने हैं, हम उनके हैं, ऐसा चिंतन करोगे तो वो भगवान तुम्हारे मन को अपनी गोद में बिठा देगा। आप भी रोज अपने मन को भगवान की गोद में बिठा दो, चाहे फिर आपके कृष्ण भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कोई भगवान हो। आप धारणा करो, 10 मिनट का ध्यान करो तो आप धारणा करो कि भगवान शिव हैं अथवा गुरु जी हैं, ध्यान में बैठे। भगवान कैसे नहीं जानते तो गुरु जी या भगवान का चित्र कैसा है तो जानते हैं। तो भगवान शांत हैं, इधर उधर देखते नहीं हैं, वे चप्पल नहीं है, स्थिर तत्व में है। भगवान स्थिर तत्व में है, गुरु स्थिर तत्व में, इस प्रकार की धारणा करो आप उतनी देर स्थिर तत्व में आसानी से आने लग जाओगे। राम तीर्थ की पत्नी भोली भाली थी, वो तत्व ज्ञान समझने में समर्थ नहीं थी, तो बालकों, स्त्रियों और साधारण बुद्धि वाले के लिए श्रद्धा ही उसका अंतःकरण शुद्ध करने का सरल साधन है। बस श्रद्धा हो तो जो विद्वानों को जप से, तप से, नियमों से, यज्ञ से, हवन से जो कुछ शुद्धि होती है, यज्ञो दानम तपश्चर्या पावनानी मनीषणा, श्रद्धा से बुद्धि पवित्र हो जाती। और बालक को, स्त्री को तो श्रद्धा करने में अपने घर की चीज है, तो दैत्य बालकों ने श्रद्धा से प्रह्लाद की बात मानी और ऐसा चिंतन करने लगे। शंड अमरक ने देखा शुक्र के बेटों ने कि अरे प्रह्लाद तो एक भगवान का भजन करता और पिता उसका विरोधी और हमारे को संकेत मिला है, अब तो पूरे क्लास के सारे छोरे प्रह्लाद की पार्टी में आ गए, हमारा क्या होगा। भागते हुए गए दैत्यराज के पास, प्रह्लाद को बुलाया गया, कुपायमान हुए। शंड अमरक को कहा कि तुम इसको दंड दो। शंड अमरक ने अपने अभिचार मंत्र से विद्या का उपयोग किया, आवाहन किया, कृत्या उत्पन्न हुई। कृत्या प्रह्लाद को मारने के लिए प्रेरित किया, लेकिन प्रह्लाद का सुदर्शन था अर्थात रक्षा कवच, सर्वत्र हरिये वो दृढ़ भाव था, तो प्रह्लाद के रक्षा कवच सुदर्शन से कृत्या घबराई और देखा कि तो मेरे को भेजने वाले मेरे को मौत के मुंह में भेज रहे, तो भेज रहा था प्रह्लाद को मारने के लिए शंड अमरक का मंत्र, लेकिन वो अभिचार मंत्र से जो कृत्या उत्पन्न हुई वो उन्हीं के पीछे लग पड़ी। तो आपका अगर रक्षक सुदर्शन दृढ़ है तो आपके ऊपर जो ईर्ष्या द्वेष या कुछ फेंकता है तो घूम फिर के कम बैक उसके पास ही चला जाता है। तो भक्त को ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा ये बिगाड़ देगा, वो बिगाड़ देगा, वो चिंता नहीं करनी चाहिए, भक्त को थोड़ा बहुत सचेत रहना चाहिए, लेकिन रक्षा कवच से मजबूत बने रहना चाहिए। भगवान की सत्ता और भगवान का नाम और भगवान पर दृढ़ श्रद्धा जितनी रक्षा करती है तो कोई रक्षक सत्ता भी तो है। जयराम जी की, आपका इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट विफल हो जाता है। जब आप पुण्य नहीं करते और पुण्यों का उपभोग ही करते रहते तो आपका इष्ट कमजोर हो जाता है, तो फिर अनिष्ट आपका गला दबोच लेता है। ये आपका राज्य वैभव या जो सुख संपदा है वो आपके शारीरिक बल से नहीं, आपके पुण्य के बल से। इसलिए आप पुण्य अर्जित करते रहिए। और होली की रात का जागरण, जप, ध्यान पुण्य का ढेर ढेर पैदा करता है। दिवाली की रात, शिवरात्रि की रात, जन्माष्टमी की रात, ये चार महारात्रियां हैं। महान तपस्या, महान पुण्य, महान फल देने वाली। इन रातों में अगर कोई संभोग करे तो महान सत्यानाश भी होता है। तो होली को उत्सव, राग द्वेष और ईर्ष्या को भुलाने वाला उत्सव होली। हरि के रंग से तुम्हारा हृदय को रंगो और पलाश के रंग से तुम्हारे त्वचा को रंगो और दिलभर के ज्ञान ध्यान से बुद्धि को रंगो। हे दैत्य कुल के होनहार सपूतो, श्री हरि तुम्हारे आत्मा होकर बैठे। मैं गुरुदेव का स्मरण करके ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा निर्दोष दिल है, इसलिए तुम इस कथाओं को ध्यान से सुन रहे हो। अब जाओ, नई नई प्रहलाद और कुछ बताओ। जिसके पाप अधिक होते वो हरि चर्चा नहीं सुन पाता, और जिसके पुण्य अधिक होते वो हरि चर्चा सुनते सुनते अघाता ही नहीं है। गुणायनम शीलाधम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम, गुणवान शीलवान संपन्न कृतज्ञ होना चाहिए गुरुजनों के संग से। और गुरुजनों के संग से ये सीखा जाता है कि आपदा के समय गुरु कैसे रहते हैं, वाहवाही मिलते समय गुरु लोग कैसे रहते हैं, चिंता के समय या विपदा के समय गुरु लोग अपने धैर्य का कैसे उपयोग करते। इस प्रकार गुरुजनों का संग और सत्संग जीवों को संसार में रहते हुए भी संसार के पाप ताप से विनिर्मुक्त कर देता है और श्री हरि के ज्ञान ध्यान में उनका मन लगा देता है। इसलिए गुरुओं का संग और सत्संग सर्वोपरि उन्नति का साधन है।